प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 43। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। सुरसुर नरपति वंदने प्रविनष्ट घाती कर्मने, प्रणमन करूं धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने।
वरिशेष तीर्थ करने
सिद्ध शुद्धा सित्वने, मुनि ज्ञान द्रग चारित्र तप वीरा चरण संयोगने, ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदु वाणी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने, अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाहु समूहने। तसु शुद्ध दर्शन ज्ञानमु पवित्र आश्रम पामिने, प्राप्ति करूं साम्यनि येनाति शिव प्राप्ति।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें से ये दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 15 पर हम आ गए, जहाँ से 18 नंबर का प्रवचन शुरू होता है वहाँ से हम पढ़ेंगे। इसमें इंटरनेट वो MTNL का नहीं है, चल रहा है बराबर? हाँ, बीच में बंद होगा तो MTNL पर ले सकते हैं। हाँ ठीक है, आज देखेंगे क्या होता है। गया ना वो, यहाँ एक ऐसा है ना गोल और उसमें आड़ी डांडी, उसमें प्रेस करो, यहाँ वाला गोल है आड़ी डांडी वाला, ऐसा करो उसमें पहला करो एडजस्ट हो गया कि क्या आया अभी वो पहला? हाँ जिस थोड़ा प्रेस कर, अन्य भी कुछ आ गए? हाँ ठीक है, हाँ आगे बढ़ते, यहाँ पर प्रवचन शुरू करते। प्रवचन सार 22 गाथा चलती है, अब ये हिंदी में प्रवचन किया है। क्या कहते हैं, 21 गाथा में ऐसा चला कि केवल ज्ञानी को सब प्रत्यक्ष है। जब वहाँ कोई हिंदी भाषिक आते हैं ज्यादा तो गुरुदेव स्वयं हिंदी में बोलते थे, और ये प्रवचन सुधा जैसा बोला है वैसा वर्ड टू वर्ड उन्होंने ये पुस्तकें बनाई है, इसलिए यहाँ हिंदी आया, नहीं तो रोज हम गुजराती पढ़ते थे। सर्वज्ञ भगवान को जो केवल ज्ञान है उसमें सब प्रत्यक्ष है। तीन काल तीन लोक की आदि अंत बिना की, जिसको हम अनादि अनंत कहते हैं, आदि बिना की और अंत बिना की सब चीज उनको प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष यानी उनके प्रत्यक्ष ज्ञान में वो जानी जा रही है। इस गाथा में परोक्ष नहीं है ऐसा कहते हैं। पहले क्या कहा था, सब कुछ प्रत्यक्ष है, अब कहते हैं परोक्ष कुछ भी नहीं है। नथ्य परोक्षम, उसमें ऐसा कहा था कि भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी तो है ही, परंतु उसका अंतर में ध्यान करने से, उसी का अर्थ क्या है, शुद्ध उपयोग का परिणमन करने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान कैसे हुआ, तो ये स्वभाव में एकाग्र होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
यहाँ भगवान आत्मा का कहने से क्या मतलब है?
यहाँ भगवान आत्मा कहने से उसका जो स्वभाव है, त्रिकाल कायम रहने वाला सर्वज्ञ स्वरूपी ऐसा भगवान, उसको भगवान आत्मा, अपना अपना, हर एक का अपना, ये यानी जो अरिहंत सिद्ध को यहाँ भगवान नहीं कहा है, हर एक का अपना स्वभाव भाव है, उसको भगवान आत्मा कहते हैं।
भगवान आत्मा कहते ही अपने स्वभाव की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, ऐसा समझना चाहिए।
तो ये पर भगवान को कितने भी नमस्कार करे क्या करे, पर उन्होंने क्या मार्ग बताया कि तू अपने भगवान आत्मा को देख, उन्हीं ने बताया ना, ऐसा नहीं कि हम उनकी अभिनय कर रहे, ये उनकी तो विनय होगी, क्योंकि उन्होंने बताया जैसा अगर हम मार्ग अवलंबन करते हैं तो ये हमारी विनय होगी, ये उनकी विनय होगी। जैसे हम बच्चों को कोई कहते हैं तो वो मानेंगे तो हमारी विनय कर रहे कि नहीं मानने से विनय कर रहे हैं। तो हम भगवान की बातें मानते हैं तो भगवान ने क्या बताया कि तू स्वयं भगवान आत्मा है, उसी में तू एकाग्र हो जाए, तो जैसे भगवान के केवल ज्ञान हुआ वैसे तुझे भी केवल ज्ञान हो जाएगा, मार्ग एक ही है ना? तो उसका अंतर ध्यान करने से यानी अपने सर्वज्ञ स्वभावी जो भगवान आत्मा है उसी में एकाग्र होने से, दूसरी भाषा में शुद्ध उपयोग का परिणमन करने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यह केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और बाकी मति शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष थे, अवधि मनोपरि ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें लिमिट थी कुछ हा? तीन काल तीन लोक की दशा को जानता है। तीन काल तीन लोक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, त्रिकाली यानी अनादि अनंत सब पर्याय को कितने समय में जानते हैं, एक समय में जानने की ताकत रखता है। केवल ताकत है नहीं, सब वो तो जानना चल रहा है उसमें। यह मोक्ष तत्व की श्रद्धा कराते, केवल ज्ञान का स्वरूप क्यों नक्की करना, तो मोक्ष तत्व की श्रद्धा कराने के लिए।
यहाँ गुजराती में द्रव्य क्षेत्र काल लिखा है, काल नहीं लिखा,
नहीं मगर ये हिंदी बोल रहे, अभी हिंदी बोल रहे। हाँ, कोई कहते हैं कि केवली भगवान भविष्य को नहीं जानते, सिर्फ वर्तमान को जानते हैं, भविष्य की पर्याय हुई नहीं तो क्या जाने, तो कहते ऐसे जो मानते हैं वह झूठ है, ये कह रहे वह झूठ बात है। भगवान तो तीन काल, तीन काल में भविष्य काल आया कि नहीं आया, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल आ गए, और वो केवल थोड़े ही नहीं, अनादि से लेकर अनंत काल तक की सभी पर्यायों को जानेंगे, कुछ को जानेंगे ये अतिशयोक्ति है इसलिए, बहुत को जानते इसलिए कह दिया सर्वज्ञ, ऐसा नहीं है। कहते भगवान तो तीन काल तीन लोक की, भविष्य की पर्याय जो अभी हुई नहीं उसको भी प्रत्यक्ष जान भी बताए ना, और भूतकाल की पर्याय बीत गई वह अभी नहीं है वह भी प्रत्यक्ष जानते हैं। भगवान आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव तो हमारे आपका सबका ऐसा ही है, और यहाँ ऐसा ही पर्याय में प्रकट हुआ है। ज्ञान स्वभावी प्रभु आत्मा, उसकी जो पूर्ण पर्याय प्रकट हुई उसमें सब प्रत्यक्ष होता है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, हमारी ऐसी श्रद्धा हो जावे, हम अपने ज्ञान में केवल ज्ञान संबंधी निर्णय करना है, केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा, परंतु केवल ज्ञान कैसा है और कैसे प्रकट होता है उसका निर्णय उसकी श्रद्धा हमें अभी इस ज्ञान अल्प ज्ञान में करनी है। यहाँ 22 गाथा में कहते हैं कि केवल ज्ञानी को कुछ भी परोक्ष नहीं है। 21वीं गाथा में केवल ज्ञानी को सब प्रत्यक्ष ऐसा कहा था और अब उसको कुछ परोक्ष नहीं ऐसा कहते हैं। 80-80 से नहीं, वो तो जो है वो बताया और वो जो नहीं है उसको भी बताया। टीका, समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही। आवरण का क्षय कैसे होता है? पहले बात आई थी ना शुद्ध उपयोग के बल से ऐसा आया था। हाँ, अपना शुद्ध प्रभु चैतन्य आनंद कंद आत्मा है, यानी अपना स्वभाव भाव हर एक का तो ऐसा ही है कि स्वभाव में कोई राग नहीं है। स्वभाव हम किसको कहते हैं? ध्रुव कायम रहने वाला जो अंश है उसको हम स्वभाव कह रहे हैं और वो पलटने वाली वो पर्याय परिणम है। तो ये स्वभाव तो एक सदृश है, अनादि अनंत, वैसा का वैसा कायम। यही यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु कैसा है, तो चैतन्य आनंद कंद आत्मा है। उसके शुद्धोपयोग की रमणता से किसका क्षय होता है? आवरण का क्षय हो जाता है। केवल ज्ञान दयादान व्रत भक्ति आदि के राग से उत्पन्न नहीं होता। वह राग तो बंध की क्रिया है। तो काहे से उत्पन्न हुआ? तो शुद्धोपयोग से हुआ। देखो उपयोग के तीन भेद हैं, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध के दो भेद, शुभ और अशुभ। तो इसमें से शुभ से अशुभ से तो बात कोई नहीं कहेगा कि अशुभ से मोक्ष होगा, परंतु शुभ से होता है, दया दान आदि से होता है, पंच महाव्रत से होता है, इसी सब की कल्पना है। कोई क्रिया करने से, व्रत आदि करने से मुझे मोक्ष होगा या मैं सम्यक दर्शन होगा, ये जो मानते हैं
तो ये हाँ। ऐसी एक कथा प्रसिद्ध है हाँ। कई लोगों में कि वो गुरु चल नहीं सकते थे तो उसको उसका शिष्य खब्बे पे लेके गंतव्य जहाँ जाना था वहाँ गए, तो गुरु तो ऐसा ही रह गया। जो उसका शिष्य था कपड़े पहने हुए उसको केवल ज्ञान हो गया। यहाँ क्या करते है? उसने क्या किया? गुरु को ले जाने का राग किया और राग से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ये बात निश्चित रूप से बताई। यानी हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमारी कहाँ कहाँ मतलब भूले होती थी या हो रही है उसका हमें ज्ञान हो जाए।
हाँ देखो अभी हम तीसरी लाइन पढ़ रहे, दया दान व्रत भक्ति आदि के राग से उत्पन्न नहीं होता। क्यों? राग तो बंध की क्रिया है, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ बंध है ही है। समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति तप पूजा आदि का भाव है, भाव है ने वो तो चारित्र गुण का विभाव है, विभाव है ना, वह तो राग है और राग है वह तो बंध का कारण है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में वह कारण नहीं है। अपना शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा जो अनंत अनंत गुण की समृद्धि से संपदावान प्रभु है, उसके शुद्ध उपयोग के ध्यान से केवल ज्ञान प्रकट होता है। यानी बाहर कुछ करने धरने से नहीं होता। और लोग क्या कहते हैं? खाली आत्मा आत्मा कहते हो, उसकी बातें करते हो, करना धरना तो कुछ नहीं है, कुछ करेंगे तो पाएंगे, तो क्या करना चाहते हैं? यानी ये जो कुछ क्रियाएं हैं ना, किसकी? शुभ राग तो क्रिया भी नहीं है, क्रियाएं तो शरीर की है। शुभ राग क्या हुआ? भक्ति के परिणाम आए तो हमने वो उनके गीत गाए भगवान के, पूजाएं की, द्रव्य चढ़ाया। तो ये बाहरी चीज से तो कुछ नहीं होता है, राग से बंध होता है। शुभ राग से शुभ बंध होगा मान लेते, परंतु यहाँ तो बंध का अभाव कैसे होगा? तो जो शुद्ध स्वभाव भाव है उसके दृष्टि करके, उसमें उसका निर्णय करके उसी में एकाग्र हो जाएंगे तो उसको कहेंगे शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग से ही सम्यक दर्शन होगा, शुद्धोपयोग से ही मुनि अवस्था ऊपर बढ़ेगी और शुद्धोपयोग से ही केवल ज्ञान होगा। यानी यही एक पुरुषार्थ है। यानी केवल ज्ञान के लिए अन्य पुरुषार्थ और सम्यक दर्शन के लिए अन्य, ऐसा नहीं है। तो हम आपसे पूछते हैं, अभी आपको मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए कि सम्यक दर्शन का? बोलो। हाँ, सम्यक दर्शन का। अभी हमने क्या बताया? सब एक ही है, कोई अन्य अन्य पुरुषार्थ नहीं होते, एक ही बात है। अपने स्वभाव का निर्णय करके उसमें एकाग्र होना, जिसको शुद्धोपयोग कहते हैं। शुद्धोपयोग से ही सभी बातें बनने वाली। इसलिए मैंने पहले बता के फिर प्रश्न पूछा है। यहाँ लिखा है ना, देखो, शुद्ध उपयोग के ध्यान से केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्रिया कांड है वह तो शुभ उपयोग है, और यह केवल ज्ञान तो अंदर शुद्ध चैतन्य के उपयोग से यानी शुद्ध उपयोग की परिणति से उत्पन्न होता है। यह संवर निर्जरा की शुद्ध दशा है, क्योंकि उसके फल में केवल ज्ञान हुआ ना, उसके फल में मोक्ष होगा, तो उसके पूर्व दशा कौन सी है? संवर निर्जरा वाली। तत्वों की भाषा में बोलना है तो यह संवर निर्जरा की दशा है। अंदर भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप के सन्मुख होकर, देखो भगवान आत्मा ने स्वभाव भाव तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ही, अब जो पर्याय है वो उसके सन्मुख करना है, ने उसी में एकाग्र होना, तो उसके सन्मुख होकर वीतरागी शुद्ध पर्याय हुई, यानी जिस पर्याय ने आत्मा का लक्ष्य किया वो कैसी पर्याय हुई? वीतरागता वाली, यानी राग रहित, अर्थात संवर निजरा की जो पर्याय उत्पन्न हुई वह शुद्ध उपयोग है। और आगे बढ़कर, क्योंकि शुद्ध उपयोग हुआ फिर भी शुरुआत में राग पूरा मिटा नहीं है, वितरागता की शुरुआत हो गई। जैसे कोई शुद्ध उपयोग करके चौथे गुणस्थान में आया तो अभी उसके पूरा राग मिट गया क्या? अभी तीन कषाय चौकड़ी बाकी है। और स्थिरता करके वो पांचवा गुणस्थान हुआ, इन्हें क्या हुआ? दो कषाय चौकड़ी बाकी है, दो कषाय चौकड़ी का अभी उदय नहीं है, इन्हें वो जीव के वो कषाय नहीं हो रहे। हाँ, आपका प्रश्न है सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला है, उसको भय और चिंता नहीं होती, उसको भय श्रद्धा अपेक्षा नहीं है, परंतु चारित, क्योंकि हमने देखा भय का उदय तो आठवें गुणस्थान तक है। सम्यक दृष्टि को उस चौथे के योग्य भय है, परंतु ऐसा भय नहीं है कि अरे मेरा नाश ही हो जाएगा, क्योंकि उसने मैं शरीर को नहीं माना है, मैं आत्मा को उसने जानकर माना है। उसकी प्रतीति कैसी है? केवल आगम से जानकर नहीं हुई है, उसने आत्मा का अनुभव करके यह मैं जुदा हूं ऐसा उसने नक्की कर दिया है। अब उसको मरण की वैसी चिंता नहीं है, परंतु कोई रोग आ जावे या कोई ऐसे है तो दवा लेने के परिणाम हो गए उसके। और भय क्या, नहीं अभी कोई चोर वगैरह नहीं घुस तो घर में तो इस हिफाजत से रखेगा ना अपनी धन संपत्ति, क्या नहीं रखेगा? समय दृष्टि अभी उसको किसी का भय नहीं। हाँ, भय नहीं, वो श्रद्धा अपेक्षा, पर चारित्र की अपेक्षा मुनिराज है, मुनिराजों को तो चारित्र अपेक्षा भी भय नहीं रहा। मुनिराज जा रहे वन में और सामने से सिंह आता है तो वो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, उनके जीवन शेष हो तो सिंह रास्ता बदल के निकल जाएगा। उनके साथ कोई श्रावक चल रहा है समय दृष्टि, अरे वो भाग के झाड़ पर चढ़ जाएगा। इसको कहते वो श्रद्धा अपेक्षा, उसका ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊंगा या ऐसा कुछ, पर उतना राग है उसको अभी, शरीर मैं हूं ऐसी आत्मबुद्धि नहीं है, पर शरीर के प्रति राग अभी है बाकी है, क्योंकि अभी उतनी कचास है ना उसके, अभी उसकी तीन कषाय बाकी भी है। तो भय नहीं, चिंता नहीं, वो किस अपेक्षा? सप्त भयों का नाश हो जाता ऐसा जब कहते हैं, श्रद्धा अपेक्षा लेना उसको। क्योंकि चिंता नहीं, अभी हम देखते हैं रामचंद्र जी को, अभी सीता का अपहरण हुआ तो चिंता नहीं हुई, शोक नहीं हुआ, हुआ ना? हाँ, इतना हुआ कि जैसे वृक्षों को पूछते, अभी हमने वो बलभद्र और नारायण की बात देखते थे हम, उसमें क्या होता है, इतना भाइयों का प्रेम, तो उसका शव लेके छह छह महीने तक उसको नहलाना धोलाना खाना खिलाने की चेष्टा करना, ये क्या है सब? हम कहें ना ये मूर्खता है ना ऐसी, और फिर भी उनका सम्यक तो चल रहा है वहां पर, और वो भी जानते कि मेरा इतना राग, क्योंकि केवल ज्ञानी को भी पूछा था उन्होंने, वो इसमें पद्म पुराण में भी आता है कि उन्होंने पूछा मुझे लक्ष्मण के प्रति इतना राग क्यों है, वो भी जानते है कि ये अति राग है उसके प्रति, वो जानते नहीं ऐसी बात नहीं। समय दृष्टि को जो क्रोध मान माया लोभ होते उसका वो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, परंतु वो कैसा है अपने से अभी उसको, उसमें जो पहले मिथ्यात्व अवस्था में जो उसके साथ एकमेक पना लगता था, मैं और क्रोध एकमेक लगता था, वैसा भी नहीं लगता है। अपने में ही उठने वाले राग हो द्वेष हो उसको पर तरीके साक्षी भाव से वो जानते रहते। हाँ, वो जब क्रोधित हो गए, जैसे राजा युद्ध पर जाएगा, अरे ये मेरे से जुदा है अभी मैं खाली इसको देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, युद्ध खेलेगा वो, कोई देव शास्त्र गुरु के ऊपर उपसर्ग करता है तो बिल्कुल डटकर विरोध भी करेगा, परंतु फिर भी उस राग से वो भिन्नता उसकी बनी रहती है वहां पर भी। अनित्य अन्य तो होगी नहीं, वो तो पहली पात्रता में आ जाती है, क्योंकि ये सम्यक्त्व की पात्रता है। जो अनित्य अभक्ष भक्षण वगैरह करता है उसको तो सम्यक्त्व होने की पात्रता नहीं है। हाँ देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नीचे बंद पढ़ रहे थे हम संवर निजला की शुद्ध रचा, पेज नंबर 15 नीचे से तीसरी लाइन, दूसरी लाइन थी। हाँ बोलिए।
सिंह का मुंह में वो हरण का वो था जो दिख रहा था, सब खास करके मंदिर में जयपुर में कहा है
ने वो चित्र में कैसे बताया कि वो मांस भक्षी था, बस इतना बताना है। ये जरूरी नहीं कि उस समय वो मांस खा रहा था। ये हम मुनिराज कब आए थे, दिन में आए के रात में आए थे, बोलो। मुनिराज रात में
ही हिंट,
दिन में तो सिंह तो दिन में खाते नहीं है मांस तोड़कर, वो तो रात, अरे क्यों नहीं है, रात्रि भोजन वो तो रात्रि में शिकार करके रात्रि खाते हैं ना, बैठा होगा दिन में, पर वो मांस भक्षी था बस इतना। अभी उसको क्या है, थोड़ा मिर्च मसाला लगाने के लिए मुंह में हिरण का मांस था, ये कहने की पद्धति, किसने देखा उनको खा रहा था, वो मांस भक्षी प्राणी था, खुकार प्राणी था, बस इतना ही।
वो चलत चित्रपट नहीं था, सिर्फ चित्रपट था।
अभी हम जनरली हम देखते हैं रात में वो रात, वो तो निशाचर है ना, रात को ही शिकार करके रात को खा लेते हैं। कौन
नहीं, वो शाम के टाइम मैंने खाता है
इसमें, अरे वो जब खिलाएंगे तब खाएगा क्या, उसको थोड़ा ही वो शिकार करके खाएगा, दिन भर भी खाते हैं, मगर ऐसे विचार कर सकते हैं ना हम। अभी वो रात को फाड़ के रखा है और दिन में खाया, वो बात अलग होगी।
कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं कि उसको हरण ऐसा टच करके जाता है, ऊपर से जाता है, कुछ नहीं ऐसा ही बैठा
है। देखो पशु जो है वो जब भूख लगती तभी जा के खाते हैं, यानी हम समझ सकते हैं कि मुंह में मांस होना ही चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है। वो मांस भक्षी है बस इतना मात्र हम कह सकते कि वो, हाँ अब वो भी कहाँ का सिंह था आप मालूम नहीं, भोगभूमि का था कि कर्म भूमि का था ये भी मालूम नहीं हमको, कहाँ का सिंह था मालूम नहीं है, मालूम नहीं कौन से देश का था। हाँ भोगभूमि के तो क्रूर नहीं होते, बाद में क्रूर हो जाते हैं, भोगभूमि के प्राणी भी मांस भक्षी नहीं होते हैं। अभी वो सिंह को छोड़ देते, अभी उसको समय दर्शन हुआ था तो उसने अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य किया था, बस इतनी बात है। देखो ये हम नीचे की लाइन में आए थे, नीचे से दूसरी लाइन, वही ना, अंदर भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप के सन्मुख होकर वीतरागी शुद्ध पर्याय हुई, अर्थात संवर निजरा की जो पर्याय उत्पन्न हुई वह शुद्ध उपयोग है, और आगे बढ़कर जब शुद्ध उपयोग बढ़ जाता है यानी स्थिरता बढ़ जाती है, यानी कि स्वरूप में शुद्ध उपयोग की लीनता होती है, यानी जरूरी नहीं कि बहुत टाइम बढ़ जावे, ऐसा नहीं है, वो उसकी उग्रता जिसको कहेंगे, गहराई उसकी, लीनता बढ़ती है, तब केवल ज्ञान होता है, ऐसी बात है। इस प्रकार यहाँ संवर निर्जरा और मोक्ष तीनों की श्रद्धा कराते हैं, यानी ये तीन तत्व क्या है उसके बारे में यहाँ विस्तार से बताते हैं। कोई ऐसा कहे कि दया दान व्रत भक्ति पूजा के भाव से संवर निर्जरा होती है तो वह मिथ्यात्व, ये मानना मिथ्यात्व है। दया दान के परिणाम होना या कोई दयादान करता है वो मिथ्या तो नहीं है, जब ऐसी बातें आती है ना वो उससे धर्म होता है, इस मान्यता का निषेध है, तो पूछते फिर हमको दान देना चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी क्या उपदेश कर रहे उसको सही रूप से पकड़ नहीं पा रहे, ये सही नहीं पकड़ने के कारण उसके घोटाले हो रहे। बहुत कठिन बात नहीं है, अगर सही रूप से उसको पकड़े तो बिल्कुल सरल बात है। यहाँ क्या कह रहे देखो, किसी का निषेध किया उन्होंने, दयादान व्रत भक्ति का निषेध किया, उस भाव से संवर और निजरा होती है, इसका निषेध है। आवाज हमको नहीं सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया। हाँ देख क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उस भाव से संवर निजरा होती है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। बहन समझ में आ रही है बात आपको, क्योंकि बाकी लोग तो हमेशा सुनने वाले हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर आजकल क्या हो रहा है, कुछ ये करो, दान दे दो, पूजा करो, ये व्रत करो, तप करो, कोई उपवास करो, तो करने वाले भी मानते नहीं, हमने धर्म के लिए कुछ किया, हमने धर्म कुछ किया, पर क्या उसमें धर्म है क्या नहीं है पहले ये नक्की करना है। क्योंकि वो क्या है, शुभ भाव है, शुभ भाव है तो बंध है कि नहीं है, बिल्कुल है, बंध से छुटकारा नहीं होने वाला। तो बंध का अभाव कैसे होगा, जिसको कहेंगे संवर निजराव कैसे प्रकट होगी, तो कहते आत्मा के अनुभव से होगी, वितरागता से होगी, राग से नहीं होगी। तो राग से धर्म होता है, ये जो मान्यता है वो मान्यता मिथ्यात्व है। भक्ति करना, दयादान करना, ये मिथ्यात्व तो नहीं, वो तो मुनि अवस्था तक भी है कि नहीं, उनके भी भगवान की भक्ति है। ये भक्तामृत स्तोत्र की रचना की कि नहीं मुनिराज ने, तो उसमें भक्ति है कि नहीं भगवान के प्रति। तो भक्ति का निषेध नहीं है, भक्ति से धर्म होता है ये मान्यता है, ये मिथ्यात्व है। या ये करने से मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ धर्म के इसमें क्षेत्र में, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वो भक्तामृत स्तोत्र में तो फला फला मंत्र बोलने से पेट की बीमारी ठीक होती है, फेफड़े की बीमारी वही होती है, वो क्या है?
अरे पूरे संसार की बीमारी, भव की बीमारी मिटने वाला जो है, तो उसको तो हमने डिवेल्यूशन कर दिया। क्या किया देखो, हमें ये रोग हुआ और ये आप मंत्र कहो, ऐसे लाल वस्त्र पहनो, इधर मुंह करो और ये भक्तामर का पाठ करो, तो तुम्हें ये लाभ हो गया। तो उसमें शरीर मैं हूँ ये मान्यता कायम रख कर कर रहा है कि वो मान्यता मिट गई, वहां पर किसके लिए कर रहा है? हाँ, यानी फेफड़े में ये बीमारी होती है, किडनी की ये बीमारी होती है, ये बीमारी बंद हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये नमोकार मंत्र से हीलिंग हो जाता है, ये क्या है? मैं शरीर हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मान्यता और दृढ़ हो रही है, और वो भी भगवान के नाम पर। तो लोग पूछते हैं करने में क्या हर्जा है, अरे मतलब शरीर के लिए क्यों करते हैं? करो ना, नमोकार मंत्र से तो सही रूप से उसको समझ लो, उसमें जो पंच परमेष्ठियों का स्वरूप नक्की करो, तो धर्म की शुरुआत हो जाएगी, आगे चलकर मोक्ष हो जाएगा। और ये किसके लिए वापर रहे हम? शरीर के, खाली शरीर के लिए नहीं, शरीर मैं हूँ ये मान्यता सहित कर रहे, समय दृष्टि के शरीर में हूँ मान्यता नहीं है, वो भी दवा ले सकता है, वो दोष नहीं है, परंतु वो मान्यता कायम रखकर वो उसकी और पुष्टि कर रहा है, ये मिथ्यात्व की मान्यता और पुष्ट कर रहा है, इसका निषेध है यहाँ पर। ऐसे संवर निजरा होती नहीं, क्या कहा, दयादान व्रत भक्ति वगैरह से संवर निजरा नहीं होती, ये कह रहे सूक्ष्म बात है भगवान। श्रोता पूछते, व्यवहार से तो निश्चय होता है, ऐसी ही मान्यता है, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब निश्चय प्रकट होता है तो साथ में जो राग भाव है उस पर आरोप दिया जाता है, कि उसको भी कह देते हैं कि ये तो व्यवहार समय दर्शन, जिसको समय दर्शन हो गया है, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र एक समय में प्रकट हुआ, अभी चौथे गुण स्थान में है, तो अभी उसके राग बाकी है कि नहीं बाकी, अभी उसके कौन से भाव आ रहे हैं, देव गुरु शास्त्र के भक्ति के भाव है, उसके सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धान है, इसको क्या कहेंगे अभी, इसको व्यवहार समय दर्शन कहेंगे। किसको? जिसके निश्चय है उसके साथ वाले राग को भी व्यवहार से समय दर्शन कह देते हैं, परंतु वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय भी नहीं है, वहां तो वैसे तो राग की पर्याय है। देखो क्या कहते हैं, प्रश्न इसीलिए पूछा, व्यवहार से तो निश्चय होता है, तो कहते पूज्य गुरुदेव श्री, व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग तीन काल में होता नहीं, क्योंकि व्यवहार राग है और निश्चय मोक्ष मार्ग अरागी दशा, अरागी कहो या वीतरागी दशा है, समझ में आती बात? राग करने से वितरागता होगी यही कह रहे हैं यहाँ पर। व्यवहार क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको कह दिया? राग को। किसके राग को? सम्यक दृष्टि के राग को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया। जैसे व्यवहार से, कथन व्यवहार से होता है, वस्तु दोन नहीं होती है। एक मोक्ष मार्ग ये है और एक मोक्ष मार्ग, ऐसे दो मोक्ष मार्ग नहीं है। आपके घर में वो चाय की बर्नी है ना, काहे की है? कांच की है कि प्लास्टिक की है? हाँ, स्टील की है। हाँ, स्टील की है। तो वो स्टील की है कि चाय की है? यानी दो बर्नी है ना, एक स्टील की और एक नहीं, तो एक ही है। तो जिस चीज से बनी है, जिस धातु से, स्टील की है, तो उसको स्टील की कहना ये निश्चय है। परंतु वहां हम चाय रखते हैं तो उसको चाय की, क्योंकि हम क्या, जरा चाय की बर्नी लाओ वहां से, हमको चाय बनानी है। इसको कहते हैं व्यवहार से कथन किया है, कथन में आता है व्यवहार। तो जहां निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसे जीव के अभी राग बाकी है। तो राग का कार्य क्या चल रहा है? क्योंकि वो शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, देवशास्त्र गुरु में सब आ गए, तो उसकी भक्ति पूजन वगैरह सब, उसके दयादान सब भाव हो रहे, उसको क्या कहेंगे? अभी व्यवहार से उसको समय मोक्ष मार्ग कहेंगे, समय दर्शन मोक्ष मार्ग कहेंगे। कब? निश्चय है तब। और आपकी वो स्टील की बर्नी में हमने कुछ रखा नहीं, खाली है, तो उसको कौन सी बर्नी कहेंगे? चाय के शक्कर की? ऐसा ही यहाँ पर है। व्यवहार कब होगा? अब वहाँ बर्नी नहीं है, वह बर्नी नहीं है, आपकी बर्नी नहीं है। बर्नी ही नहीं है तो उसको हम चाय की क्या शक्कर की कहने का प्रयोजन कहाँ है? जरूरी ही नहीं है वहाँ पर। ऐसे जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ व्यवहार की बात ही नहीं होती। लोगों का यही मूलभूत बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी गलत जो चलता है, ये करते करते निश्चय प्रकट होगा। ये जो सदाचार है ना, जो हम जैसे हम कहेंगे तो अष्टमूल गुण का धारी है, ये अभक्ष भक्षण का त्याग किया है, अन्याय नीति, वो तो सदाचार है, वो भलापना है उसका। ऐसे जीव को, क्योंकि ऐसे जीव उपदेश सुनने के लिए राजी हो जाएंगे। जो तीव्र क्रोधी या तीव्र जिसको कहेंगे कषायी जीव है, वो क्यों सुनने को लिए तैयार होंगे? वो तो बाहर मौज मजा करने में उनको आनंद होता है, उनको ये सुनने के लिए आनंद नहीं आता है, सुनने के भाव भी नहीं होते हैं, तो वो तो पात्रता में चले जाते, उसको व्यवहार नहीं कहते। अब आगे देखते हैं। श्रोता कहते हैं व्यवहार को साधन तो कहने में आता है, क्योंकि ये कहने की पद्धति पड़ी है ना, मिला क्या? ऊपर से दूसरा प्रश्न श्रोता पूज्य गुरुदेव श्री, साधन तो तब कहते हैं कि जब साध्य सिद्ध हुआ, बाद में उसका आरोप देकर साधन कहते हैं। जैसे जिसने समय दर्शन प्राप्त किया तो उसके पहले उसने शास्त्र का अभ्यास किया था, बारंबार उस पर चिंतन वगैरह किया था, तो उस पर आरोप आएगा कि ये करने से हुआ। वो करने से नहीं होता, वो पर्याय तो स्वतंत्र अपने से ही होती है, परंतु उपचार कब होता है? जब कार्य हुआ तब पूर्व अवस्था पर आरोप आएगा कि ये करने से उसको समय दर्शन हुआ। तो कहते आरोप देकर साधन कहते हैं, लेकिन उससे होता है ऐसा है नहीं। आरोप देने पर भी वो तो कथन, वो तो कहने ही मात्र के लिए है नहीं। सूक्ष्म बात है भाई, प्रभु नो मार्ग छे शुरानो, यहाँ कायर का काम नहीं है। परमात्मा जिनेश्वर देव, जिसको एक समय में तीन काल तीन लोग जानने में आया, उसका फरमान है, उसका फरमान है, उनकी वाणी में ये बात आई है कि हमको केवल ज्ञान कैसे हुआ ये बता के गए, पूरा मार्ग केवल ज्ञान प्राप्त करने का। नहीं तो केवल ज्ञानी हो गए और चलो अनंत सुखी हो गए, चलो चले जाएंगे अभी, ऐसा नहीं। वो सहज ऐसा, उनकी इच्छा भी नहीं सबको बताने की, फिर भी सहज रूप से वाणी खिरती है तो पूरा मोक्ष मार्ग सभी जीवों के लिए प्रशस्त हो जाता है। तो कहते कि केवल ज्ञान कैसे हुआ? कि चैतन्य भगवान आत्मा, हरेक का अपना स्वभाव भाव, उसको चैतन्य भगवान आत्मा का पूर्ण शुद्ध अनंत गुण का पिंड आत्मा, उसको ध्यान में ध्येय बनाकर, हमने ध्येय संबंधी चर्चा की थी, ध्येय ने जो जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय, तो ध्यान में किसको ध्येय बनाना है, तो स्वभाव भाव को, जिसको चैतन्य भगवान आत्मा कहा। इस चीज को ध्यान की पर्याय में ध्येय बनाकर, ये ध्यान है वो पर्याय है ना, पर्याय ने स्वभाव का लक्ष्य किया और उसी में एकाग्र हुआ तो हम कहेंगे नहीं ये ध्यान की पर्याय, या उसने ध्यान किया, जो शुद्ध उपयोग हुआ उससे केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस केवल ज्ञान में तीन काल तीन लोग प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। यहाँ कहते हैं कि यहाँ नहीं, इस गाथा में क्या कह रहे हैं, उसको परोक्ष कुछ नहीं है। पहले गाथा में क्या बताया था, सब कुछ प्रत्यक्ष है, और कहते हैं परोक्ष कुछ भी नहीं है, यानी वो उनसे अननोन कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। समझ में आया, सूक्ष्म बातें बार बार कहते ना, समझ में आया, कहते समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओगे, ऐसा कहते थे। और स्वयं कह रहे सूक्ष्म बात है, क्योंकि अभ्यास बिना उसको पकड़ में नहीं, कि उसकी सूक्ष्मता गहराई उसका रहस्य जो है, यानी बिल्कुल लगता है कि ऐसे तो सादा बताए कि अपने में एकाग्र हो जाओ केवल ज्ञान हो जाएगा, परंतु उसके पीछे का पूरा जो स्वरूप ख्याल में आज आना चाहिए हमने स्वभाव भाव का। तो नव तत्व है, उसमें जीव तत्व है, यह ज्ञायक त्रिकाली द्रव्य है। अभी आप तो थे ना कि नहीं थे, सात तत्वों की बात यहाँ हुई थी जैन तत्व परिचय में से संडे को। हाँ देखो, यह सात तत्वों के नाम मालूम है आपको, सपना, जीव तत्व, अजीव तत्व, जीव अजीव के बाद वो तो द्रव्य है, और उसमें हम अजीव नहीं कहते, पुद्गल कहते हैं, यह तत्व है। हाँ नहीं, पुद्गल द्रव्य है, देख जीव अजीव बराबर है, जीव तत्व अजीव तत्व दो हो गए। हाँ अभी यहाँ संवर निजरा मोक्ष तो बता दिए, उसके पहले कुछ रह गया क्या, चल अनादि से क्या चल रहा था, जिससे छूटना है, बंद है ना। हाँ तो बंद है तो आश्रय और बंद, देखो जीव तत्व अजीव तत्व, फिर आश्रव तत्व बंध तत्व, संवर तत्व निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, और पुण्य पाप को अलग बताएं तो नौ हो जाते हैं, और पुण्य पाप को आश्रव बंध में इंक्लूड करेंगे तो सात होते हैं। बात एक ही है, नौ कहो सात कहो कुछ डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं। यहाँ बताते, देखो यहाँ नव तत्व बता रहे, जैसे हमने इसमें पंचास्तिकाय में भी नव तत्व की बात उठाई थी वहां पर। तो यह जीव तत्व, यह ज्ञायक त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली बताया नैने स्वभाव, यहाँ जीव के ही जो, देखो हम जब द्रव्य कहते हैं जीव द्रव्य, तब गुण और पर्याय सब होते हैं उसके अंदर, परंतु यहाँ क्या है, पर्यायों को अलग स्थान दिया है, क्योंकि बंध भी पर्याय है, संवर भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है, ये सब पर्याय है, और ये जो हम जीव तत्व कहते हैं उसको कहेंगे स्वभाव भाव, कायम एक रूप रहने वाला वो, उसको जीव तत्व कह दिया। और जीव तत्व कहने से मेरा मेरा अपना स्वभाव, क्योंकि दुनिया में सब जीव द्रव्य है, उनका अपना अपना स्वभाव है, पर उनके स्वभाव का लक्ष्य करने से मुझे समय दर्शन की प्राप्ति होगी। आप क्या कहते हैं, भगवान के पास केवल ज्ञान है, हमें क्या उससे फायदा है, आपका हमारा जो जानना हो रहा है अपने अल्प ज्ञान से हो रहा है कि उनके केवल ज्ञान से हो रहा है, उनके पास उनका जितना भी ज्ञान है, तो हमें अगर लक्ष्य करना है तो हम अपने स्वभाव का करना है, इसलिए जीव तत्व यानी मैं स्वयं यानी वो स्वभाव भाव, उसमें वो पर्याय को अलग स्थान दिया है, तत्वों में पर्यायों को अलग निकाला, और तत्वों में जब जीव तत्व कहेंगे यानी मैं स्वयं, वो कौन सा है, वो स्वभाव भाव, जिसको भगवान आत्मा कह रहे हैं, जिसको पारिणामिक भाव कह रहे हैं, उसी को अलग अलग नाम से यहाँ बता रहे। तो यहाँ क्या कह रहे देखो, ज्ञायक त्रिकाली द्रव्य है, पुण्य पाप तत्व है, यह आश्रव तत्व है और बंध का कारण है, वह राग में रुका वह बंध तत्व है, संवर निर्जरा तत्व है, वह शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्ण स्वरूप के सन्मुख होकर अंतर में शुद्ध चैतन्य वितरागी पर्याय प्रकट होती है, वह अहिंसा, उसी को अहिंसा कहा, और वही संवर और निर्जरा है। ऐसे उपाय से संवर निजरा से केवल ज्ञान ने मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म बात है भाई, अभी तो लोग ऐसा मानते हैं कि बाहर से यह करो वह करो उससे आत्म कल्याण होगा। यह करो वह करो क्या है, मंदिर बनाओ, ऐसा करो, ये रथ निकालो, यात्रा निकालो, संघ निकालो, हाँ उपवास करो, दान करो, बस यही। क्योंकि हम विदेश में जाते थे तो वहां पर भी ऐसे यंगस्टर्स तो पूछते थे हमको कि हमें कुछ स्कॉलर्स आते हमें ऐसा ही उपदेश देते कि पंचम काल है, इस काल में आप आत्मा का कुछ नहीं कर सकते तो क्या करना, दान दे दो। किसको दे, तो हम है ना यहाँ खड़े थे जाने वाले वहां कहते थे कि हम है उनको उनको दान दे दो। यानी भोले जीवों को ऐसे अभी ऐसा भोलापन भी क्या काम का कि जिसमें अपना ही नुकसान हो जावे। ये बात उनको जमती नहीं, इसीलिए तो हमें आकर प्रश्न पूछे ना उन्होंने। वही सच मानकर बैठ जाते तो ठीक है, वो जो चल रहा था वैसा चलता उनका।
आप हम तो आप तो फॉरेन की बात बता रहे हैं।
हाँ वही,
हम अपने हिंदुस्तान की बात बताएंगे। एक फैमिली में तीन चार भाई रहते थे, उसमें से सबसे बड़ा भाई था, उसका बेटा कुछ कारणवश उसका देहांत हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उसके नाम से 30-40 लाख रुपया इधर उधर किधर दे दिया। तो उनके घर में कोई साधु पुरुष आए और पूछने लगे, भाई ये किसका फोटो लगा है, इसके गले में हार है, क्या है क्या है, कौन है ये। तो वे नौकर फोकर बोलते हैं कि भाई बड़े सेठ का लड़का है। तो बड़ा सेठ दूसरे दिन उनको मिलने को आया दर्शन लेने को, बोले कल तुम्हारे बेटा मुझको प्रत्यक्ष मेरे को सपने में आया,
रात को 2 बजे, बहुत सुखी है, भटक रहा है उसकी आत्मा।
तो वो बोलने लगा कि वो दुखी दिखाई दिया मुझको। तो मैंने कहा क्यों भाई दुखी क्यों, तो मेरे पिताजी ने कुछ खर्चा ही नहीं किया मेरे बारे में। अरे हमने तो क्या है 25 लाख रुपया तो हमने दिए। नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, और आपको पात्र दान देना चाहिए। तो वे क्या करें, तो आप फला फला दिशा में जाना, अकेले जाना, साथ में किसी को नहीं ले जाना, बैग में पैसा लेके जाना, एक जगह बैग रख दो, उल्टा घूमो, पीछे मुड़ के मत देखो। अभी वो ऐसा, ये अपने यहाँ की बनी हुई बात है।
जैन साधु दिगंबर,
अभी तुम चुप बैठो। और तो फिर उन्होंने उसके बाद सिद्धवर कुट में 40 लाख रुपया खर्चा करके एक धर्मशाला बनाई है। इट इज एज गुड एज 5-स्टार होटल, इतनी सुंदर बनाई है। सिद्धवर कुट में जाना MP में, यानी कैसे लोग होते हैं। अभी तुम पीछे रख दिया, वहां से कोई आया उठा के ले गया तो क्या पता, वो दान हो गया। क्योंकि जब हम फॉरेन की बात बताते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है अरे ये खुद फॉरेन जाके ये बताने के लिए बता रहे। नहीं नहीं नहीं, ये जो बात घटित हुई है वहां पर
सब जगह चलती है। देखो हम ठगते नहीं, हमको चौकड़ना रहना है, इसीलिए सबसे पहले देव शास्त्र और गुरु की परीक्षा करके फिर वंदना करने की बात। परीक्षा की बात सबसे पहले, वो श्रावक का आद्य कर्तव्य है। चलो दिख गए तो माथा टेक दिया, ऐसा चल रहे हैं तो उनको भी ऐसे ही चाहिए ना शिष्य। हाँ आगे
देखो, भोपाल में एक बहन थी, वहाँ कोई ऐसा स्टेज पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो उसको गाने के लिए बुलाया। तो स्टेज पर विराजमान थे वहाँ पर कोई, तो उनके तरफ उसने देखा ही नहीं और गाना वाना गा के
मतलब तो मंगलाचरण कुछ करना था,
मंगलाचरण वगैरह। चल रहा, रुक जा, तुमको हमने हमको देखा नहीं, आओ इधर पैर पड़ो हमारे, अब बोलो।
हाँ आगे देखते हैं। देखो ऐसे बातों की कोई एंड नहीं है, है ना। तो हमें सयाने होना चाहिए, ये इतनी बातें क्यों पढ़ रहे हैं हम, अपने कल्याण के लिए। कोई हमें ठगा के ले जाए, पैसे बचाने के लिए नहीं बात है ये, तो ऐसा ही उपदेश भी ऐसे ही देते हैं ना, ये करो वो करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पता है ना सूक्ष्म बात है। अभी तो लोग ऐसा मानते हैं कि बाहर से ये करो वो करो उससे आत्म कल्याण होगा, यह मान्यता अनंत काल का मिथ्यात्व है और शल्य है, उसी को शल्य कहा। ये शल्य कायम रखते अंदर, कोई फॉरेन बॉडी गई मान लेते, रस्ते पर जाते जाते चोट आ गई, अंदर कांटा घुस गया, कांच गई अंदर, तो क्या करते घर में जाके अच्छी तरह से लपेट के पट्टी बांध देते, बराबर निकाले। अगर वो अंदर से नहीं निकालेंगे तो अंदर वो निकालेंगे भी और जख्म साफ सुफ करेंगे, फिर बाद में उसको पट्टी लगाएंगे। अगर वैसे ही रख दे अंदर और वो कचरा भी साफ नहीं किया और ऊपर से अच्छी मतलब पट्टी करके पट्टी बांध दी, अरे वो उसको पनपने के लिए और अच्छा वातावरण मिलेगा ना, जो जर्म्स है उसको और अच्छी तरह से पनपेंगे, क्योंकि आपने उसको सेफ कर दिया है। ऐसे मिथ्या मान्यता को कायम रख कर ऊपर व्रतों की पट्टी लगाते हैं, क्या होगा, जो वो गैंग्रीन होता है वैसे हो जाएगा, यही यही चल रही बात। क्योंकि सब अच्छा है अच्छा ही कहेंगे ना दुनिया में, समाज में तो उसको चाहिए अच्छा हुआ आप इतना तप करते, आप इतना उपवास करते, आपने इतना दान दिया बहुत अच्छा किया, सब तो उसकी सराहना की करने वाले हैं, आपने इतना महोत्सव किया, इतने पूजाएं की, इतना संघ लेकर आप यात्रा में गए, हाँ यानी उसको सब सराहना ही करने वाले हैं, परंतु धर्म कुछ अलग बात है ये ख्याल में नहीं आ रही। ये क्या कहा यहाँ पर, ये है ना, ये अनंत काल का मिथ्यात्व शल्य पड़ा है अंदर, और शुभ भाव से कल्याण होगा ये और गहरी बात है उसमें भगवान। हाँ बिल्कुल, और धर्म के नाम पर भी शुभ भाव का इन्हें राग का उपदेश दे रहे। पहले मान्यता, देखो राग छूटेगा नहीं, पहले मान्यता में लेना है कि ये राग है वो बंध का कारण है, ये कल्याण इससे नहीं होने वाला। अभी सम्यक दृष्टि भी ऐसे, इससे भी उच्च प्रकार के राग उनके होते हुए, अभी मुनि भी ये शास्त्र की जो इतनी रचना हुई है तो ये राग का कार्य है कि नहीं, उनके राग हुआ ना, समझाने का भाव हुआ उनका, परंतु ये अच्छा है और इससे मुझे मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा नहीं, वो अंदर स्थिरता नहीं कर पाते थे, और जब शुभ राग में आते थे तो यही भाव हो गए ना, अन्य तो दुनियादारी के तो कुछ भाव नहीं आएंगे। समय दर्शन के बाद भी जब आत्मस्थिरता नहीं है तो कैसे भाव आएंगे, स्वाध्याय के भाव आएंगे, दर्शन के भाव आएंगे, दान के भाव आएंगे, यात्रा के भाव आएंगे, परंतु उससे कल्याण होता है इस मान्यता से नहीं हो रहे, क्योंकि उसके ऐसे अभी उसके अशुभ में तो कुछ रस नहीं रहा, तो क्या होगा उसका, ऐसे शुभ में अधिक से अधिक काल जाएगा उसका। देखो नीचे का पैराग्राफ पेज नंबर 16, भगवान कुनकुंदाचार्य भगवान के पास गए थे। देखो ये सदैव गए थे वहां पर, 8 दिन रहे थे, उनकी वाणी सुनी थी, किसके पास गए थे मालूम है, सीमंदर भगवान के यहाँ विदेह क्षेत्र में, उसको ही महाविदेह का, महाविदेह में सीमंदर भगवान विराजते हैं, वो अभी भी है वही 2000, क्योंकि उनकी तो करोड़ पूर्व की आयु है, कुनकुंदाचार्य गए थे तभी समोसरण में विराजमान थे, आज के डेट में भी वहां है, बहुत लंबी आयु है ना, करोड़ पूर्व ने कितनी बड़ी हो गए, एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते और ऐसे एक करोड़ पूर्व करोड़ ऐसे करोड़, तो केवल ज्ञानी तरीके विराजते है कहा उन्होंने, थे नहीं कहा है कहा, विराजते थे नहीं कहा है, क्योंकि अभी वही है वर्तमान में है, अभी भी है लिखा, देखो 2000 वर्ष पहले भी थे और अभी भी है भगवान कुनकुंदाचार्य दिगंबर संत, 2000 वर्ष पहले वहां गए थे और वहां से आकर यह शास्त्र बनाया है, प्रवचन सार है ये, समय सारी सब आने के बाद बनाए हुए हैं, भगवान का यह संदेश है, भगवान की यह आज्ञा है। देखो भगवान के उपदेश को आज्ञा कहते हैं, हम आज्ञा किसको कहते हैं, गुरु की आज्ञा लेनी है, हम तीर्थ यात्रा को जाए कि नहीं जाए, ये धंधा करे कि नहीं करे, हमारी बेटी की इससे ब्याह करे कि नहीं करे, इसको आज्ञा नहीं कहते, ऐसे मानते हैं ना, ऐसे गुरु बना दिया और उसको ये पूछते रहते हैं, वो आज्ञा नहीं है। आज्ञा का अर्थ होता है जिसे आज्ञा सम्यक तो है, यानी वो उसका उपदेश, वही उनकी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? तुम अपने आत्मा का अनुभव कर दो। पंचम काल के देखो दो मत है उसमें, चारण रिद्धिधारी थे वो स्वयं गए या देव आकर उन देव आकर ले गए। ले जा सकते, देव उठा कर ले जा सकते, क्योंकि मनुष्य लोक में ही है ना, मनुष्य लोक के बाहर थोड़े ही है। हाँ देखो, वहां से आकर शास्त्र में भगवान का यह संदेश हो गया कि आत्मा चिदानंद आनंद कंद प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा आत्मा है, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है। कस्तूरी मालूम है? सुना तो होगा ना। हाँ, मृग मृग हिरण है, उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उस कस्तूरी की उसको कीमत नहीं है, और उसकी स्मेल आती है और वो तो इधर उधर ढूंढता रहता है, कहाँ कहाँ इधर से उधर दौड़ता रहता है। वैसे अंतर में भगवान आत्मा में अनंत आनंद की कस्तूरी भरी है, इस अतीन्द्रिय आनंद की अज्ञानी को अनादि से कीमत नहीं है। ये स्वभाव कब से है? अनादि का है। और अनंत आनंद की कस्तूरी है, अनंत आनंदमय ऐसा स्वभाव भाव है, परंतु अज्ञानी को उसकी पहचान नहीं है और वो सुख के लिए बाहर इधर उधर भटक रहा है। कब प्राप्त होगा उसको? क्योंकि पर पदार्थ में पुद्गल में सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है, फिर भी उसमें ये प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। और पुण्य पाप का विकल्प राग होता है, उसकी कीमत है। यह मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? यही रुकेंगे हम। चावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। हाँ, कल भी रहेगा, हमने अनाउंस नहीं किया था पहले। पहले हम जाने वाले थे भोपाल पे, अपने रेगुलर प्रवचन हो गए सुबह शाम के।